رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الحمدللہ آج ہم کراچی کی مشہور ٹمبا مارکیٹ میں حاضر ہیں اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے آپ نے کیا دیکھا ہے۔ ظاہر نام سے بھی یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اسی شعبے کے متعلق ماضی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے ماضی کی جب باتیں بیان ہوتی ہیں ان باتوں میں بہت ساری نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، تجربے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، نیکی کی دعوت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ایسے اپنے تجربات شیئر کیے جاتے ہیں کہ جن کو اگر بندہ حاصل کرے تو ان حاصل شدہ باتوں پر عمل کرنے سے وہ اپنی زندگی میں کافی بہتری پا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے، ان سے انشاءاللہ اس شعبے کے حوالے سے ہم کچھ معلومات بھی حاصل کر کے مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چل کے ناظرین، لکڑی کا کاروبار ایک قدیم اور اہم کاروبار ہے، اور اگر اس کی بنیاد پر بات کی جائے، اس کی تاریخ پر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کے ابتدائی زمانے سے ہی یہ کام کا آغاز ہو چکا تھا۔ مختلف اقسام کی لکڑیاں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تعمیرات بھی ہوتی ہے، فرنیچر بھی بنائے جاتے ہیں، کاغذ اور دیگر اشیاء کی تیاری میں یہ لکڑی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں لکڑی کا جو کاروبار ہے وہ ایک اہم تجارتی سرگرمی ہے، اور جس کا ہر معاشی نظام میں اپنا ایک اہم کردار ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کاروبار کرنے کے حوالے سے مخصوص ہدایت اور اصول یہ فراہم کرتا ہے، اور جس کا مقصد کاروبار کو اخلاقی اور جائز طریقے پر چلانا ہے۔ بڑی مشہور سورت ہے سورہ جمعہ۔ قرآن پاک میں کاروبار کی اہمیت کے حوالے سے اس آیت مبارکہ میں بڑا اہم ارشاد ہے۔ چنانچہ قرآن حدیث میں کاروبار کی جو تعریفات بیان کی گئی ہیں، مسلمانوں کو اس میں برکت کی دعا دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کاروبار کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا مقصد بھی بتایا کہ کاروبار میں اتنا غرق نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جاؤ۔ اسلام میں جائز طریقے سے کاروبار کرنا، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا، رشوت، دھوکہ دہی یا کسی بھی قسم کا ناجائز طریقہ اپنانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کاروبار جو لکڑی کا کاروبار ہے، اس سے انبیاء کرام بھی وابستہ رہے، صحابہ کرام نے بھی اس پیشے کو اختیار کیا، اور ظاہر ہے جو بھی بزنس کیا جائے سچائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کیا جائے اور اس کی برکت ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں تو بہت واضح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ پہلی بات ہم اگر ڈسکس کریں کہ ایمانداری اور صداقت، سچائی، اس کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ برکت کا بھی ایک کہتے ہیں ذریعہ بنتا ہے۔ پہلے مثال دی جاتی تھی کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا تو سارے کھاتے تھے، آج سارے کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کی ایک وجہ بے برکتی کی وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے اس میں ایمانداری کا کانسیپٹ نکال دیا جاتا ہے۔ اور آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ یار وہ نا کہ جھوٹی نہیں بولو گے تو کاروبار نہیں ہوگا، تو اس بارے میں آپ نے اپنی زندگی میں کیا ایسا دیکھا ہے کہ سچائی اور ایمانداری سے جو کاروبار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے تو اپنی زندگی میں جن جن کو پھلتے پھولتے دیکھا تو یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جو سچائی اور ایمانداری سے کاروبار کرتے رہے اللہ پاک نے ان کو بڑی برکت دی۔ کیا فرماتے ہیں؟
بے شک حضور، اس مسئلے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے یہ طے کرنا پڑے گا کہ معیار کیا ہے کامیابی کا، نا ہم کاروباری نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر بہت زیادہ پیسے نہیں کمائے تو اور کہا جائے گا کہ یار یہ کامیاب نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا رانگ کنسیپٹ یہاں پہ یہ ہے۔
بہت اچھا، بہت اچھا۔
تو جب وہ کنسیپٹ پہلے صحیح کر لیں گے نا کہ ہمارے جو اللہ دین نے جو ہمیں سکھایا ہے تو اس میں سچائی اور یہ وہ حقوق العباد کے وہ پلرز ہیں جن کو، تو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جن لوگوں کو ہم نے دوسرے مذاہب کے اندر بھی دوسرے معاملات میں سچائی کو اور ایمانداری کو اس کو جو ہے نا بنیاد بنایا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں آج کل کے ماحول بڑا ڈفرینٹ ہے، پچھلے دور میں جب ہم بہت جب اچھے، اب سب کی ہماری عمر ہو گئی اسی مارکیٹ میں، ساری زندگی ہم لوگوں نے نکال لی اس کے اندر، تو ڈیولپمنٹ میں دیکھیں تو اسی مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے کاروبار ہوئے، جیسے لکڑی کا کاروبار بھی ایوولیوشن بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جو آپ آئٹم میں دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی کی ایک ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بہت آتی ہے۔ لیکن جو آپ نے جو بات کہی وہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے یا یہ کرنے سے، تو وقتی طور پہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ پھلے پھولے ہیں یا ان کو نظر آیا یہ آیا۔ دوسرا ناپ تول کا مسئلہ ہے، اب ناپ تول کے معاملے میں لوگوں نے وقتی طور پہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ وہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں اس کو پھل پھول مل رہا ہے، ہم ترقی ہو رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے لوگ اس کو معیار بھی بنا لیتے ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے بھی ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ کاروبار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مستقل ایک پیٹرن کے ساتھ نا وہ ایک چلتے رہے، کسی کا کمی کسی کی بیشی۔ اب جہاں تک رزق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو فکس کیا ہوا ہے، تو وہ تو آنا ہی آنا ہے، تو اس حساب سے تو اب دیکھا جائے تو جس کے پاس جو ہے وہ اس کے نصیب کا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا۔ یہی اگر پکی بات دل میں بیٹھ جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جھوٹ بولنا اور یہ ملاوٹ کرنا اور یہ چیزیں کرنا نا وہ شاید ختم ہو جائے۔ تو ترقی تو اگر دیکھا جائے تو وہی ہے کہ ایک مسلسل ایک پیٹرن کے ساتھ چل جائے۔ ترقی کرنے والوں نے، جھوٹ بولنے نے وقتی طور پہ ایک دم تیزی کی، لیکن آنے والوں میں وقت میں دیکھا کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد تباہی کا باعث ہو گئی۔
اور یہ آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی جو ہمارے لیے شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک زبردست لیسن ہے کہ ہم نے جو معیار بنایا ہے وہ زیادہ مالداری کا بنایا ہے، پیسہ زیادہ ہے، پیسہ تو ہے وہ سکون ہی نہیں ہے، وہ نا پیسہ لے کر بستر تو خرید لیے، پیسہ لے کر ڈرائنگ روم تو سجا لیا ہے، پیسہ لے کر بیڈ روم بنا لیا ہے، لیٹے بھی ہیں لیکن نیند نہیں آتی ہے، پیسہ لے کر ہم نے دسترخوان بڑھا لیا، ایک سے ایک آئٹم رکھ لیا، مگر پتہ چلے کہ بیماریاں اتنی لگ گئی کہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ جو بات آپ نے کہی مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ انسان اگر اوور آل جتنا بھی اچھا کمانے کا سوچتا بھی ہے، اچھا وہ چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ سکون، آسائش، یعنی اچھی زندگی، پرسکون ماحول چاہتا ہے وہ زیادہ اچھا۔ اس میں سوچ کیا ہوتی ہے کہ زیادہ کما لوں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک امیر آدمی جو ہے وہ کسی دریا کے کنارے جاگنگ کر رہا تھا، صبح صبح جاگنگ کرتا تھا۔ اچھا ایک دن صبح صبح جاگنگ کر رہا تھا تو دور اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کشتی کھڑی ہے اور ایک فشر مین جو ہے نا سگریٹ پی رہا تھا کشتی پہ بیٹھ کر۔ اب یہ آدمی سوچنے لگا کہ یار اس کے پاس کشتی بھی ہے، صبح کا ٹھنڈا ٹائم بھی ہے اور آدمی بھی فارغ بیٹھا ہے تو مچھلیاں کو نہیں پکڑتا جا کر۔ تو بھاگتے بھاگتے جب قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی صبح کا ٹائم ہے، ٹھنڈا ٹائم ہے، کشتی بھی ہے تو مچھلیاں کو نہیں پکڑتا ہے۔ تو اس نے کہا میں صبح صبح گیا تھا، مچھلی پکڑ کے لے آیا۔ میں تو بڑا بیوقوف ہے، اور پکڑ لے۔ उसने कहा और पकड़ के क्या करूंगा। वो कहा नादान तेरे पास पैसे होंगे तू नायलॉन वाले जाल बना लेना। तो उसने कहा नायलॉन वाले जाल बना के क्या करूंगा। कहा भाई जरा गहरे पानी में जाके बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ना। तो कहा बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के क्या करूंगा। तो कहा बेवकूफ तेरे पास पैसे होंगे ऑटोमेटिक बोट बनाना समंदर में जाके फिर शिकार करना। तो कहा समंदर में जाके शिकार करके क्या करूंगा। अरे अल्लाह के बंदे तेरे पास पैसा होगा बंगला बनाना शादी करना बच्चे होंगे सुकून से जिंदगी गुजारना। तो उसने कहा अभी क्या कर रहा हूँ अभी क्या कर रहा हूँ। यानी इतना फेरा करने के बाद मुझे चाहिए सुकून तो मुझे तख्ते में भी सुकून मिल ही रहा है ना भाई। मैं क्या ये समझूंगा कि जब तक मेरे पास एयर कंडीशन कमरा नहीं होगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नहीं हम मजदूरों को देखते बोरी बिछा के लेटा हुआ खटाखट खटाखट मशीनें चल रही हैं धूप लगी पड़ी है फिर भी नींद आ जाती है और अपने एयर कंडीशन में भी सो रहे फिर भी नींद नहीं आती है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की और ये वाकई लॉजिकल बात है कि इंसान अगर इस तरह से सोचने जाता है तो फिर तो वो इंसानियत से ही गुजर जाता है वो दरिंदा बन जाता है जानवर से बदतर उसके अंदाज हो जाते हैं। जाहिर है जब इंसान कमाना ही कमाना है फिर तो कोई एहसास ही खत्म हो गया ना। फिर तो यही होता है कि भाई किसी के 1000 का भी नुकसान होता हो तो हो मेरे 100 रुपये बचने जाएंगे यही है मार्केट का अंदाज। तो बहरहाल ये हमारे दीन का मजहब का एक बड़ा जबरदस्त लेसन है कि काम किया जाए ईमानदारी से किया जाए और ईमानदारी से जिन्होंने काम किए फले फूले ये क्या फरमाते हैं।
असल में जो बात करूंगा वो ये क्योंकि हर इंसान का एक अपना तजर्बा होता है तो वो अपना तजर्बा ही शेयर कर सकता है।
जी जी
आज हमारी जो सोसाइटी है बताए तो एक सोसाइटी है लेकिन हर इंसान अपने इंफरादी तजर्बा जो है वो शेयर कर सकता है कि उसके साथ क्या हुआ या वो जो मार्केट को देखता है तो वो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हालात हैं या ईमान। देखिए जैसे मेरे वालिद साहब ने तजारत शुरू की उस वक्त मेरी पैदाइश भी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कारोबार चलता गया बढ़ते होते गए हम 6 भाई 3 बहनें तो अल्लाह ताला ने बरकतें दी कारोबार में। उसके बाद एक चीज़ हमने देखी कि वो ईमानदारी थी बुनियाद जो थी उसकी ईमानदारी पर। उसके बाद यही बात अली भाई ने अभी बात की कि कमीशन वाला काम या बहुत इस कारोबार के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं टेक्निकल मिस जैसे कस्टम से माल आता है तो मिस डिक्लेरेशन होती है कमीशन का काम होता है। इसके अलावा मतलब एक मकसद होता है कि पैसा कमाना और जल्द से जल्द पैसा कमाना। जब इंसान ये मकसद बना लेता है तो वो फिर तिजारत नहीं रहती। जब इंसान एक मकसद बना लेता है ना कि आपको शॉर्टकट चाहिए जल्द से जल्द पैसा कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है वो फिर तिजारत नहीं रही वो तो फिर डाकू भी कर लेता है। देखे ना वो तो उसका भी मकसद ही होता है। ताजिर का काम अल्लाह के नबी ने भी तिजारत भी की और हमें तिजारत सिखाई भी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शाम जाते थे खदीजा का माल लेकर वापसी में आकर जब एक एक चीज बताते थे तो फिर इसी से मुतासर होकर खदीजा ने
बल्कि आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि तारीख में जो लिखा है ना इस्लाम जो फैला है इस्लाम जो दुनिया में फैला है इसका जो तफसील उलमा ने लिखी किताबों में कि वो ताजरों ने फैलाई है।
जी जी
यानी जब गैर मुस्लिम मुसलमान ताजरों की ईमानदारी और इनके ये आला अखलाक देखे तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे कि ये इस्लाम है। जी जी
तो वालिद साहब को काम करते हुए देखा बिजनेस करते थे और धीमे अंदाज में और एक लिमिटेड अंदाज में ये नहीं था कि मतलब वो सारा सुकून गारत करके। आज का दौर ऐसा है कि एक इंसान एक कंटेनर मंगाता है वो बेच देता है तो कहता है कि मैं 10 और मंगाऊँ 10 को आज ही बेच दूँ। यानी इतनी तेज दौर हो गया है वो। लेकिन तिजारत का नाम ये है कि आप माल परचेज करते हैं खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं बिक जाता है उस दौरान आप ये सिलसिला मौत तक चलता रहता है। ताजिर का काम है माल खरीदना और माल बेचना
साइकिल
नहीं बिक रहा है और फिर भी आप माल परचेज कर। तो ये मेरे जैसे वालिद साहब की एक क्वालिटी थी खूबी थी कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया और ईमानदारी से किया और आखिर दम तक यानी मौत तक हमने उनको देखा तो 1982 में उनका इंतकाल हो गया। और मैंने उन्हीं की मौजूदगी में अपना काम वालिद साहब से कहा कि मुझे अपना काम करना है। वालिद साहब ने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकोगे मतलब कुछ। मैंने कहा कि नहीं मुझे अपना काम मतलब वालिद साहब के साथ रहते हुए फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी जगह दी और उस पर मैंने अपना गदानी से काम शुरू किया। वहाँ से लकड़ी लाना और माल यहाँ बेचना ये 1980 जब वालिद साहब आया थे। पर ये काम अल्लाह ने उसमें बरकत दी। तो वाले साहब ने ही मुझे बताया कि भाई एक साल में तुमने इतना प्रॉफिट कमाया है उस माल में उस वक्त। और उस वक्त भी जब मेरी 20 साल की उम्र थी तब भी मैं बड़े मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि मेरे जहन में कभी दो नंबर ही नहीं आई। इतना दीन की ना मालूम थी, ना इल्म था, ना समझ थी बस। लेकिन ये था कि गलत काम है, वो गलत काम नहीं किया।
और ये जो आप बात कर रहे हैं ना गलत सही का, तो उलमा ने बड़ी इसकी प्यारी तफसील बयान की कि जब कभी पूछना हो ना कि यार ये सही है गलत है, तो कहा ये जो अंदर मुफ्ती बैठा है ना उससे पूछो। आप यकीन माने जैसे ही वो अपने अंदर पूछते ना तो अंदर से ही आवाज आ जाती है गलत है भाई। है यानी वो काम जो हम लोगों से छुप के कर रहे हैं यार किसी को पता ना चले। मैं वो काम अगर अलग से बैठ के किस कोई भी अपना कमरा बंद करके करता हूँ और मैं अपने आप को मनाऊँ कि यार ये सही है भाई, सही है तो मैं खोलना पड़ दे, खोल खिड़की, खोल दरवाजा, जाने दे आवाज, तो पता चलेगा कि नहीं नहीं भाई ये यार किसी को पता ना चले। तो पता ना चले तो इसका एक जो बात आपको समझ में आ रही होगी कि वो यही है कि अंदर से जो आवाज़ आएगी कि गलत है। और ये जैसे कहा ना कि एक नंबर दो नंबर, ये बसा औकात हमारी अपनी डीलिंग से बात है। अच्छा मैं एक दिन की बात को आगे मैं आपसे चाहूँगा बढ़ाऊँ कि इन्होंने एक बात वालिद साहब के हवाले से, और सारे बिजनेस में हम देखते हैं कि जिसके अंदर नरमी होती है, जिसके अंदर नरमी होती है, पोलाइटनेस होती है, आजकल क्या है ये भी आप देखेंगे। लेकिन हमने जो अपनी ज़िंदगी आपने गुजारी की, क्या आपने देखा है कि जिनके अंदर नरमी होती है, खुश अखलाकी होती है, उसका कारोबार अच्छा चलता है? क्या फरमाएंगे आप?
मैं खुद भी थर्ड जनरेशन से जो ना यहाँ पर मेरे दादा ने काम शुरू किया था, इसके बाद मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी यही काम किया, मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ, मेरी औलाद भी तकरीबन इस काम में है। यही देखा है कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में ना खैर और शर दोनों को मजमुआ रखा है। अब वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरफ जो है ना उसको लेके जाते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले लोग भी यहाँ वाफिर मकदार में मौजूद हैं जिसकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है, और गलत जो करते हैं वो भी यहीं मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मेरी उम्मत का ईमानदार ताजिर जो है ना अंबिया और सिद्दीकीन के सफ में होगा। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए। अल्लाह ताला हमें सबको जो है ना वो ईमानदारी से काम करने की तौफीक दे। बाकी रिस्क तो इंसान के जितना मुकद्दर में है उसे उतना ही मिल रहा है, उसके लिए उसको कोशिश करनी चाहिए ईमानदारी से। बाकी नरम मिजाज लोगों का भी कारोबार चलते हुए देखा है और तुर्श मिजाज लोगों का भी देखा है कि वक्ती तौर पे तो उस चीज़ का बेनिफिट हो जाता है। एक पीआर के साथ जो काम होता है ना, तो ज़ाहिर एक दफ़ा आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो वो अगली दफ़ा आपके पास दोबारा लौट कर आएगा, और ये काम आपको एक दफ़ा तो करना नहीं है। ज़ाहिर हमारी तीसरी अगर पीढ़ी यहाँ काम कर रही है तो इस काम के अंदर बरकत रहेगी, अल्लाह ताला मजीद भी पीढ़ियाँ यही काम करेंगी अगर उसमें बरकत रहेगी। उस बरकत का सहरा इंसान के अपने रवैये पर भी उसका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको करते।
और वैसे भी ये बात एक मुझे अभी वो हमारे रुकनेश्वर हाजी अब्दुल हबीब भाई के तो रिश्तेदारों में को हुआ कि उनके एक रिश्तेदार थे, उनको अपनी फैक्ट्री में जॉब करते हुए 50 साल पूरे हो गए, तो ओनर ने अपनी पर्सनल घड़ी जो उनको तोहफे में दी 50 साल पूरे होने पे। तो वो आके डिस्कस हो रही थी, मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार इस बंदे ने जो 50 साल अपनी फैक्ट्री में गुजारे, सेठ में आखिर वो क्या था 50 साल छोड़ के नहीं गया? आज अगर हम कहीं सोचते हैं कि इसके दुकान ताता लगा हुआ है भाई, अब मार्केट में 25 दुकानें, कस्टमर आपसे लेकर गया उस 12 दुकानें छोड़कर आपकी दुकान पर आता है वो, तो अब आखिर वो क्या अट्रैक्शन है कि जो आपकी तरफ वो माइल करेगा? भाई ये मार्केट में तो हर दुकान पे आइटम रखा हुआ है, रेट की बात है तो जिस रेट में आप दे सकते हो उस रेट में ये भी दे सकता है, आखिर क्या वजह है कि 10 दुकानें छोड़कर वो आपके पास आएगा? वो आपकी मुस्कुराहट है, वो आपकी डीलिंग है, वो आपका अंदाज है। तो इससे ये भी पता चलता है कि मार्केट में अपने मेमनी में बोलते हैं जो हसियो जो घर वसियो है, जो हंसता है घर बसता है उसका। और जो ये जो अखलाक है, चाहे वो अपने मुलाजमीन के साथ हो या कस्टमर्स के साथ हो, इवन के मार्केट के साथ हो, यानी मैं अगर कहीं वक्त गुजारता हूँ, अगर मैं नहीं आऊँ, अगर किसी ने नोटिस नहीं लिया, इसका मतलब ये कि मेरे होने ना होने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। और अगर आज मैं मार्केट में नहीं आया और किसी ने पूछ लिया कि यार खैरियत आज अमीन आया नहीं यार है, इसका मतलब कोई चीज है ना जो अपील करती है, तो वो चीज क्या होती है? आप क्या फरमाएंगे इस पर?
सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप टिम्बर मार्केट में तशरीफ लाए, और टिम्बर मार्केट का जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरह है कि जहां तक मेरी मालूमात है ये 1938 में रजिस्टर हुई कच्ची मेमन बरादरी, इसमें भरपूर हिस्सा ले लिया और मुख्तलिफ बिरादरियाँ जो है इस वक्त टिम्बर मार्केट में उसमें है। हमारे यहाँ जो सबसे अहम और जो एक एक ऐसा सानिया हुआ 2014 में कि टिम्बर मार्केट में आग लग गई, उसमें आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो कि लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची टिम्बर मार्केट ग्रुप ने उसको बड़े एहसन तरीके से और बड़ी ईमानदारी से, और ये मार्केट अगर आप देखोगे तो पहले सुजुकी भी नहीं जा सकती थी, लेकिन बड़ी मेहनत से, जहाँ तक ईमानदारी का ताल्लुक है, बड़ी मेहनत से और दुकानों का भी और बड़ा हिसाब किताब करके जो है उनको दी गई और सब खुश हैं। तो ये क्या है कि एक ईमानदारी, अच्छा माहौल और खुश अखलाकी, और इसके अलावा दीनी माहौल, यहाँ पे टिम्बर मार्केट में आप देखोगे आपको दीनी माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा भाईचारगी से यहाँ पे, कोई ये नहीं है कि ये फलान कौम का है ये इसका नहीं, ईमानदारी से देखो ना, जो ईमानदारी से करता है वो आज बहुत आगे है और जिन लोगों ने गलत काम किया वो पीछे हैं।
जी मदन शाह के नाजरीन, ये 2014 का जो वाकया था तो ज़रा मेरा भी आना हुआ था, मेरे लसनत ने भी बराह रास्त दुआओं का भी सिलसिला किया था, लेकिन एक बात ये देखी कई दिनों तक ये मुतासर रहा सारा सिलसिला, लेकिन यहाँ ये अजीब एक अंदाज था कि हर एक इसको अपना नुकसान समझ रहा था और सब ने मिलकर जिस तरह से इस पूरे वाक़े को टैकल किया, क्योंकि ज़ाहिर लकड़ी की मार्केट है पूरी और जिस तेज़ी से आग बढ़ी थी और फिर भी जो एक मुतवक्के जो नुकसान थे उससे काफ़ी हद तक इसको बचाया गया, बहुत ज़्यादा इसमें मेरा कहना सब ने अपना अपना हिस्सा अदा किया, कंजस्टेड एरिया था, लेकिन इन सारी बातों पर हमने आम तौर पर जो देखा है कि ऐसे मौके पर लूट मार, ऐसे मौके पर गिरते को एक और धक्का दो, ये नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस वाक़े में बहुत सारी जो है ना वो दूरियां कुर्बत में बदल गई होंगी, और शायद होते हैं ना कि ऐसा अंदाज देखा और जिस तरह हमारे भाई ने बताया कि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मुतासरीन जो उसके थे उन सब को अपनी अपनी जगह पर सेट किया गया, और आने वाला आकर ये देखेगा तो शायद तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये काम इस तरह से नुकसान हुआ और इस तरह से निकल आए। क्या इसमें आपकी क्या यादें हैं, आपने क्या देखा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जी मैं भी उसी वक्त यहीं मार्केट का एक हिस्सा हूँ, टिम्बर मार्केट का, और उस वक्त भी हमारे जैसे हमारे मोहम्मद अली भाई ने कहा तो ज़ाहिर बात बहुत बड़ा सानिया था और काफ़ी बड़ा नुकसान था यहाँ पर। तो जैसे अब ये बिल्डिंग अगर ना होती, मुझे ऐसा याद पड़ता है, तो ये आगे की जो फ्रंट की दुकानें हैं हमारी, ये भी शायद जल जाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नुकसान बाद में हमारे ग्रुप के लोगों ने, हमारे अनिफ सुमरो साहब थे और दीगर लोगों ने, लोगों को कंपनसेंट करवाया जहाँ से भी हो सका। लेकिन वही आपने जैसे कहा कि एक जज्बा था लोगों के अंदर कि यार इनकी मदद की जाए, बाकायदा जब ये बिल्डिंग गिरी थी तब भी एक कैंप कायम किया गया, लोगों को किराए के ऊपर जिनके नहीं थे उनको किराए पर घर दिलवाए गए, फर्नीचर दिलवाया गया और हर तरीके से इनको सपोर्ट की कि जब तक कि इनकी ये बिल्डिंग ना बन गई या वो अपने अपने पाँव पर ना खड़ोगे। अच्छा मार्केट का एक ये जैसे मुझे जो है, मैंने गारमेंट्स का भी काम किया है 10 साल, तो इस टिम्बर मार्केट में भी मेरे वालिद साहब का एक था तो मैं यहाँ पे ही रहा हूँ। असल में पहले हज़रत तवक्कल ज़्यादा होता था लोगों को हर चीज़ में, अगर कारोबार नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, अब जो है ना वो हम थोड़ी सी कमी महसूस करते हैं। घर से निकलते तो हैं बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह कहकर, लेकिन जब हम दुकान पे आते हैं तो हमारी जो सोच है ना वो बदल जाती है कि यार उसके पास कारोबार ज़्यादा मेरे पास, जैसे अल्लाह फरमाता है ना कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं मज़ीद दूंगा, तो वो शुक्र गुजारी की जो कैफियत आजकल जो है ना वो कम नज़र आती। तो इसमें थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करें, जो रिस्क है नसीब का वो तो मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि यार आपकी वजह से किसी की मदद की जा सकती है तो यकीनन करनी चाहिए, चाहे मार्केट हो, चाहे अपना इलाका हो, मोहल्ला हो, या कई और भी वजह है, बहुत सारी होती हैं। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि बड़े हैंग टू माउथ लोग चलते हैं और जो सफ़ेद पोश हैं वो शायद सामने नहीं आते, हमने रमज़ान में तो बड़ा देखा है ऐसे ऐसे लोग बेचारे आते हैं, तो इस सिलसिले में भी हम जो है ना वो समझ रहे होते हैं कि यार इनकी मदद करनी चाहिए। तो बहरहाल उस समय जैसे आप टिम्बर मार्केट में आग लगी थी या ये बिल्डिंग गिरी थी तो लोगों ने बड़ी मदद की, जैसे हमारे ग्रुप के लोगों ने, अनीब भाई हमारे और दूसरे आज साहब हैं, आज इकबाल हैं और दूसरे सब ने मदद की, तो ये होना चाहिए, इससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मदद होती है और हमारी नेकियां ज़्यादा।
वैसे यहाँ मैं बात को आगे इस टॉपिक को अगर हम लेते हैं कि सामने वाला आगे जा रहा है मैं पीछे रह रहा हूँ, तो यहाँ पर एक इमाम गजाली अली रहमा ने इसका एक हल दिया है। इमाम गजाली अली रहमा ने जो हल दिया है ना वो ये है कि दुनियावी मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, और ये हदीस में भी है, हदीस में भी इस तरह का खुलासा है कि दुनियावी मामलात में अगर हम अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो हमें अपनी चीज़ छोटी लगेगी। जैसे अगर कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है तो मोटरसाइकिल पर जाने वाला अगर कार वाले को देखता है तो उसकी मोटरसाइकिल की अहमियत कम हो जाती है कि यार कार, ये तो कार में जा रहा है। अच्छा, कार वाला भी जा रहा है तो अगर वो बगैर विदाउट एयर कंडीशन है और बराबर से एयर कंडीशन निकलेगा तो कहेगा यार अपनी तो शादी है, ये तो एयर कंडीशन में जा रहा है। अच्छा, एयर कंडीशन वाला भी जाएगा तो फिर वो सीसी का चक्कर होता है कि अपनी तो 850 cc है, ये तो 1300 cc में जा रहा है। अच्छा, 1300-1600 cc मिल भी गई तो फिर वो मॉडल पर झगड़ा होता है कि अपनी 2022 की है, ये 2025 में जा रहा है। तो पता चलता है कि इस मामले में तो पेट भरता ही नहीं है। अगर मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को देखे तो मोटरसाइकिल अच्छी लगेगी इसको, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे तो इसको साइकिल अच्छी लगेगी, पैदल वाला बस में छत पे जो बैठा हुआ उसको देखे कि यार अल्लाह का शुक्र है पैर सलामत अपने पैदल ही घर पहुंच जाएंगे। मतलब शुक्रगुजारी का अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, और जैसा शुरू में भी बात हुई थी अनिबा ने की थी कि अगर जो मेरे नसीब में है मुझे मिलना ही वही है। कोई हर कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है, क्योंकि हर एक के नसीब में अरबपति बनना ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है अंगूठा छाप सेठ है और उसके पास इसके जो एम्प्लॉय होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सेठ साहब को साइन करने में नहीं आते चेक पर, वो मुलाजिम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पता चले कि दुनियावी पढ़ाई कर तो जरूर ली मगर असल में नसीब सेठ का लिखा हुआ है, तो सेठ इसलिए अरबपति है। तो हम जिस हाल में रब ताला ने रखा है, शुक्रगुजारी का अगर पहलू रखेंगे तो किसी से हसद भी नहीं होगा, किसी को तबाह होने का तमन्ना भी नहीं होगी कि ये लुट जाए, फट जाए, इसका नुकसान हो जाए, ये भी नहीं होगा। बस ये है कि अगर उसको कोई मिला है, अल्लाह ने माल दिया है, तो हम यही दुआ करें कि या अल्लाह इसको मजीद अता फरमा और इसके सदके मुझे भी अता फरमा। हमारी अगर तंग दस्ती है, हमारी अगर परेशानी है, तो ज़ाहिर है हम अल्लाह से ही फरियाद करेंगे, वही मुसब्बिबुल असबाब है, वही मामलात को हल करने वाला है। हम अगर देखते हैं कि बरकत नहीं है, मेरे मसाइल हल नहीं हो रहे, तो मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, ये शिकवा होता है यार, इतनी दुआएं कराता हूँ, मौलाना से भी दुआ कराई, मजार पे भी जाके दुआएं की, दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो उलमा फरमाते हैं नमाज पढ़ते हो? नहीं जी, नमाज है फजर? नहीं जी, आँख नहीं खुलती। अब तुम अल्लाह की नाफरमानी करो, अल्लाह के बताए हुए काम ना करो, और आप अल्लाह को कोई काम बोलो तो वो फौरन हो जाए। तो भाई ये तो उसूल है, और ये नमाज का तो पता ही कितना सख्त हुक्म है। उलमा फरमाते हैं कि बेनमाजी होना ये इतनी बड़ी नहुसत है, बेनमाजी होना ये इतनी बड़ी नहुसत है कि अगर कोई नेक आदमी भी बेनमाजी के लिए दुआ करता है कबूल नहीं होती उसकी, यानी बेनमाजी होना इतनी बड़ी नहुसत है। तो नमाज को वक्त पे अदा करें, जो अल्लाह के अहकाम है उसको पूरा करें, और अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह वो बरकत अता फरमाएगा। और जो हमने कारोबार किया है, वक्ती तौर पर आजमाइश है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। अगर आजमाइश आई है, वक्त गुजर जाएगा, आसानियां मुकद्दर हो जाएंगी। एक और बात भी आपने शुरू में कही, एक तो आपने कही शुक्रगुजारी की, और एक अगली बात क्या कही थी?
तवक्कल की।
तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो इंशाल्लाह वक्त गुजर जाता है।
मैंने अपने वालिद साहब को शुरू से मैं देखा है, मैं तो पढ़ता था, तो वो जब क्राइसिस तो कारोबार में ऊपर डाउन अप डाउन होते हैं, क्योंकि उन्होंने कारोबार शुरू किया तो, लेकिन उनको देखा तो वो तवक्कुल बड़ा करते थे, जब अल्हम्दुलिल्लाह कह देते, जब भी कारोबार के कोई आगे पीछे मामला, तो मैंने उनसे ये सीखा था वो तवक्कुल बड़ा करते थे, जो जो रब ने देना है वो मिलेगा, तो वो नसीब का है वो मिलेगा, कहीं नहीं जाता। तो इसके लिए कि ये हलाल तरीका इख्तियार करे, तवक्कुल करे और शुक्रगुजार रहे, तो इंशाल्लाह वो कहीं उसको नुकसान नहीं।
खलीफा हारून रशीद के तौर में कहत पड़ गया, अब बड़ी आजमाइश हो गई, खाने पीने का नहीं था, तो लोगों ने गुलाम को देखा, बड़ा नाया धोआ, बड़े तेल शेल लगाकर साफ सुथरा, टिप टॉप, तो वो उसको जब देखा कि यार यहाँ तो सारे बुरा हाल है सबका, सोच सोच के, और ये बड़ा ठाट बाट से रह रहा है, तो कहा खैरियत भाई तुम इतने फ्रेश फ्रेश लग रहे हो, नहा धोकर इतने बन छन के कहाँ जा रहे हो? तो कहा क्या मसला है भाई, यहाँ तो सारे भूखे हैं मरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? कहा मेरा जो मालिक है ना, उसके तो गोदाम भरे हुए, उसके पास बहुत अनाज है, मुझे टेंशन नहीं है, इसलिए मैं फ्रेश हूँ। पकड़ कर ले आया हारून रशीद के पास, कहा कि ये इतना घूम रहा है, हम इससे पूछ रहे हैं तो ये जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? जवाब ये दे रहा है कि मेरा मालिक जो है उसके पास गोदाम भरे हुए, मुझे टेंशन नहीं है। खलीफा हारून रशीद ने कहा हमारे लिए लेसन है इसमें कि इसने अपने आका पर भरोसा किया, ये पुरसकून है, हमें अपने रब पर क्यों भरोसा नहीं है? अगर हम भी अपने रब पर भरोसा करना शुरू कर दें तो हमारा रब तो हर चीज़ की कुदरत रखता है, हर चीज़ को मतलब बदलने पर कादिर है, वो सारी मसाइल हल करने पर कादिर है। तो बड़ी अहम बात है कि अगर कारोबार में वक्ती तौर पर आजमाइश होती है, नौकरियों में वक्ती तौर पर आजमाइश होती है, तो इस आजमाइश से निकलने के लिए हम रब ताला की बारगाह में सर को झुकाएं, हाथों को उठाएं, हैं सर को झुकाएं। किसी बुजुर्ग की खिदमत में एक नौजवान हाजिर हुआ, कहने का हजरत जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, आप मुझे कोई इलाज बताएं। तो कहा कि स्टैम्प देखिए, मोहर का देखिए, कस पे लिखाई कैसी होती है? तो कहा लिखाई तो उल्टी होती है, लेकिन जब लिखाई कागज़ पर झुकती है, लगता है स्टैम्प, लिखाई कैसी हो जाती है? सीधी हो जाती है। कहा तू भी वजू कर, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जा, जब तू अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा, झुकेगा, अल्लाह तेरे सारे उल्टे काम सीधे कर देगा। तू झुक तो सही, तो आ तो सही उसकी बारगाह की तरफ, तो दुआ के लिए हाथ तो उठा, तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे।
अभी आपने बात की शुक्रगुजारी पर, कि शुक्र बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। आप देखें नमाज भी पढ़ते होंगे ना, लेकिन नमाज में भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए भी आदमी परेशान रहता, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआएं भी कर रहा हूँ, मेरी मुश्किलें हल क्यों नहीं हो रही है? वजह क्या थी? बस सबब उसकी नाशुक्री है।
कुरान और हदीस, इसका स्टडी करना और फिर उलमा अहले सुन्नत से इस पर सुनना और इसका फिर ये असर लेना ना, ये इंसान की ज़िंदगी का जो हमारा डायरेक्शन है वो सेट रखता है। अब प्रॉब्लम अगर हम अपना देखते हैं ना, तो अभी क्या है कि अभी हमारा कुरान का तफसीर पढ़ना सुनना नहीं है, हम तो मीडिया कल्चर हो गया, जो भी उधर आकर बोल रहा है हम उसकी सुन रहे हैं, जो भी आ रहा है उसकी समझ रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो बोलने वाला है वो कौन है, क्या बोल रहा है, इन सब की हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और जिस तरह हमने भी सुना, मैं आप सबको दावत दे देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत जो सिरातुल जिनान तफसीर कुरान, ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है और इसका बाकायदा हमारा ऑनलाइन एक कोर्स भी होता है। मैं ताजरों को भी कहूँगा कि तिजारत कोर्स ये दावत इस्लामी के तहत हम करें, ताकि ये जो सच्चाई, ईमानदारी, तवक्कुल और जो जो वो बातें कि जो जिन बातों से हमारे कारोबार को तरक्की होगी, और यकीनन जो एजिड पर्सन है वो इस बात की गवाही देंगे कि जब भी इस तरह से हमदर्दाना रवैया रखा गया, जब भी ऐसी कोशिशें हुई, हमारी मार्केटों में, हमारे आपस के मोहब्बतों में बहुत तरक्कियां हुई, बहुत उरूज हुआ, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा गया। अच्छा, मैं चाहूँगा गुलाम रसूल भाई आप भी, अनिल भाई आप भी हैं, कि क्या कोई ऐसा गलतियाँ आपने देखी हो कारोबार में, भले नाम तो हम नहीं ले रहे किसी का भी, लेकिन होता ना कि बाद ऐसी चीज़ें अपना ली जिससे हमने लोगों में बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो नुकसान देखा। तो मदनी चैनल के ज़रिए अगर कोई ऐसा तजर्बा आप अपना शेयर करना चाहें कि जो आपने ऐसा कारोबार में कुछ ऐसी गलतियां देखी कि जिसको किया तो ना जद्दी पुश्ती जो कारोबार होता है वो देखा देख एकदम से बर्बाद हो गया। हमने देखा कि जद्दी पुश्ती जो कारोबार करते रहे, जैसे अभी हमने इस मार्केट का ही सुना कि 1938 में ये मार्केट रजिस्टर्ड हुई, तो गोया माशाल्लाह जिस जगह हम जिस एरिए में बैठे हैं इस एरिए में अप्रोक्स तकरीबन 90 ईयर्स प्लस जो है वो कारोबार हो रहा है जहां हम आपके पास आए हैं। और ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो भी यही है कि आपने क्या देखा है, तो हमने पुरानी पुरानी बातें कुछ शेयर की हैं। तो आपने कुछ कारोबार में ऐसी गलतियाँ करते देखा कि जो करने से बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ हो?
मैं तकरीबन 1980 से जो है इस मार्केट में हूँ, और मैंने मतलब जो चीज़ देखी है ना वो यही है कि जिनका बहुत अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा रहन सहन, लेना देना सब कुछ था, लेकिन वहाँ पे वही बात आ जाती है कि वो जो ना अपनी पे जब आते हैं और तवक्कल जब छूटता है इंसान का, और वो वही बात है कि वो मैयार जो ना हमारा जब पैसा बनता है ना कि यार हमारा पैसे वाले का हमारा मैयार पैसा है, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि अच्छा चलता हुआ कारोबार भी जो है ना वो उनकी आज फैमिलियाँ जो ना डूब गई है, निशान नहीं है उनका। इसकी वजह सिर्फ वही यही होती है कि सही गलत की तमीज़ छोड़ देते हैं हम लोग, उसमें वो किसी भी तरीके से आप ले लें कि भाई वो किस तरह आया क्या हुआ, वो ख़त्म कि भाई हमें किस तरह माल आ रहा है, किस तरह हमें बेचना है, नहीं वो इसमें जो ना वो आ जाता है कि भाई झूठ भी बोलना और सब चीज़ें आ जाती हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो हमारा तवक्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर तवक्कुल हमारा हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, तवक्कुल से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है।
कुछ ऐसी फैमिलीज भी तबाह उनको जिनको हमने डाउनफॉल होते देखा कि वो जो उनके पास वही एक इतना ज़्यादा गुरूर, एक तकब्बुर और एक मियार उसका आ गया कि अपने सारे के सारा मैं खा जाऊं वाली आई ना, तो आहिस्ता 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 करके और वो बिल्कुल वो ज़मीन दोज हो गए। दो चीज़ें ये हमने देखी। अब जो हम अगर मियार की बात कर रहे थे ना, तो हज़रत मैं समझता हूँ कि आज के मसाइल का हल एक चीज़ के अंदर है और वो है जो जो मैं समझता हूँ जो दौलत है वो है कनात। जिस शख्स को अल्लाह ताला कनात दे देना उसको सारी दौलत मिल जाती है, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर उसमें राजी है अगर वो, तो फिर तो उसके पास तो मसला ही ख़त्म हो गया ना। उसके बड़ी गाड़ी का मसला ख़त्म हो गया, उसके लिए बड़े बंगले का ख़त्म हो गया, उसके लिए बड़े कारोबार का ख़त्म हो गया। जब वो उसमें राजी है जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, तो फिर उसके लिए सब मसला ख़त्म हो गया। अब जो मांगते हैं अल्लाह से, जो उसके पास मौजूद है ना, हमने उन लोगों को देखा है कि अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है। सेहत ऐसी चीज़ है कि शायद इससे बढ़ के नहीं है। आप देखें अरबपति खरबपति लोग जो सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने कारोबार में लगा दी ना, आखिर में जाके उसी सेहत को खो दिया। वो सारी दौलत देने को तैयार है कि यार हमें ये मिल जाए, कोई खुदा ना खास्ता किसी मामले में बीमारी में। तो सेहत और वो कनात है, वो चीज़ है जिसके अंदर जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दौलत है। जब भी हम कनात इख्तियार कर लेंगे, हमारे बहुत सारे मसाइल जो ना उसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं। वाली साहब एक दफ़ा मतलब मेरे से एक जिक्र उन्होंने किया था, एक दफ़ा वो घर पर जब आराम करते थे, तो जब मैं दुकान के लिए एक और काम करता था उसके लिए निकलता, तो उनका अजीब किस्म का कुछ बाजों का तरीका होता था बात बताने का। तो मैं पूछा तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तो सुबह जब निकलते थे ना तो घर में बैठा करते थे, कहाँ जा रहे हो अच्छी में हमको पूछा कितना होने, दुकान पे कारो दुकान पे क्या करने जा रहा है, मैंने कहा कारोबार पैसा कमाने के लिए। बोला बेटा घर से निकलो ना इज्जत कमाने में, निकलो जब इज्जत कमाओगे ना तो कारोबार में तो दौलत, जब काम पे जा रहे हो कारोबार तो कमाओ कमाओगे ना, लेकिन जब फैसले करने का वक्त है ना तो फैसले में ये करना कि मेरी इज्जत किस में है, तो रिजल्ट तो आएगा कि उसने देना है। तो ये बुजुर्गों का तरीकेकार था, कनात सबसे बड़ी दौलत है, सेहत है यही हमारे पास सबसे बड़ा इनाम है। अगर ये चीजों को हम अवेल कर ले तो मैं समझता हूँ हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता
है। और बहुत बड़ा अमीर है, इज्जत नहीं है क्या, लेकिन एक गरीब मजदूर है। मगर उसकी मैंने जो शुरू में बात की ना कि मेरे ना आने से किसी को कोई फील ही ना हो, आप बताओ ये कब होगा फील, कि जब वो बात होगी। और आपकी जो बात है ना उससे बात समझ में आती है कि हम जो नहीं मिला ना हमको उस टेंशन ने परेशान किया है, जो मिल गया अगर उसकी खुशी मना लेना यकीन माने मजा आ जाए। है जो मिला है उसकी खुशी नहीं मना रहे, जो नहीं मिला उसकी टेंशन नहीं, मुझे 90 रुपए मिल गए मुझे इसकी खुशी नहीं है, वो जो 10 रुपए नहीं मिले ना तो उसके टेंशन ने मुझे पार कर दिया। इसमें जो हमारी आखिरी अब गुफ्तगू एंड पर ही है कि जैसे नए ताजरों का एक हमने एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम शायद अगर लेना चाहें कि हमारे जो मार्केट के अहम अफराद हैं तो इनका भी कहना है, और दारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा ही है कि ये जो अट्रैक्शन दिया जाता है ना कि आप चलेगी आपकी मर्जी, तो वो चलेगी मर्जी, लेकिन वो मर्जी ऐसी चलती है कि वो जो है ना वो भी ले जाती है। तो इस्लाम ने सूद का जो कॉन्सेप्ट दिया है ना वो तो यही है कि ये सूद का जो कारोबार या लेन देन करने वाला वो या रब ताला से ऐलान जंग करता है, और ज़ाहिर है उसने फिर उसमें हारना ही हारना है। और जो कुछ इज्जत, जो कुछ शोहरत और जो कुछ मालो असबाब, ये सब लुट जाना है। लिहाजा अगर खुदा ना खास्ता इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है तो आज नहीं अभी फौरन इमीडिएट इस काम को कैसे ख़त्म किया जाए इसके बारे में कोई फैसला कर लें। और जो कारोबार किया जाता है उसकी उसमें सच्चाई ईमानदारी वक्त की जो कमिटमेंट है, माल की जो कमिटमेंट है हुजूर, ये भी एक जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो अक्सर मतलब वहाँ के जो लोग हमारे यहाँ से अगर कभी बिजनेस किसी का ख़राब होता देखते हैं ना, कहते बस है यही कमिटमेंट पूरा नहीं होता, कि जो चीज़ कही वो वहाँ निकलती नहीं है, जितनी कही उतनी होती नहीं है। और सच्ची बात है कि हम बाद अवकात किसी के बारे में वो बताया किसी ने कि एक दुकानदार था, उस दुकानदार से एक किसान अपने यहाँ से घी लाता था और घी लाकर वो दुकानदार को देता था और दुकानदार से उसके बदले राशन ले जाता था। तो एक एक किलो का वो पैकेट लेकर आता था, दस दस किलो घी देता था और उसने रकम का वो राशन ले जाता था। तो एक मर्तबा जब वो किसान आया घी लेकर, तो दुकानदार ने ले लिया उससे। अब लेने के बाद जब उसका राशन वाशन वो ले गया तो दुकानदार को ऐसे कुछ सूचका हुआ, तो उसने उसके वो घी के पैकेट को तोला, तो तोला तो वो 900 ग्राम था। उसने दूसरा तोला, दूसरा भी 900 ग्राम, 10 के 10 900 ग्राम, यानी 10 किलो में एक किलो का चूना लगा दिया उसने। अब दुकानदार तो बड़ा गुस्से में आ गया कि यार मैं तो हमेशा इस पर भरोसा करता था और मैं इसको जो है मतलब ईमानदार समझता था और मैं इस तरह से करता था। अब जैसे ही वो एक आध महीने के बाद आता होगा, तो एक आध महीने के बाद जब दोबारा आया, अभी जैसे ही वो दुकान पर चढ़ा तो गरज पड़ा, हे धोखेबाज है, फ्रॉडी है तू, तू इस तरह से करा। वो किसान परेशान हो गया, क्या हो गया भाई। अब ये दुकानदार अंदर ही बैठे बैठे उसको कोसने शुरू कर दिए, निकल जाओ यहाँ से, तो मेरी दुकान पर नहीं चढ़ना। तो ये तो भाई बात क्या हुई, मसला क्या हुआ, कर तू झूठा फरेबी है, मैं तो ये ईमानदार समझता था और तू जो घी लेकर आता था पैकेट में, तुझसे ऐसे बगैर तोले रख लेता था, तूने इस तरह धोखा दिया, 900 ग्राम का तोलता है, यूं करके फिर उसको सुनाने शुरू की। अब थोड़ा इसका हल्का हुआ तो उसने कहा, भाई मेरी बात तो सुनो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई बाट वाट तो है नहीं, मैं तुमसे चीनी का जो पैकेट ले जाता था उसको एक तराजू में रखता था, दूसरे तराजू में मैं घी रख देता था, तो जितना तुम्हारा चीनी होती थी उतना मैं घी तोल देता था। तो पहले तो अपना तोलो कि तुम्हारा कहीं तुम्हारा चीनी का पैकेट तो 900 ग्राम का नहीं है। तो पता चलता है कि ये नहीं, जब बिगड़ता है ना, ये आवे का आवा बिगड़ता है। तो बहरहाल हमारे लोगों ने जो तरक्कियां की हैं माजी में, जो कारोबार की तरक्कियां हुई, मोहब्बतों में हुई, प्यार में हुई, सच्चाई में हुई, ईमानदारी में हुई, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने में हुई। तो आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, मोहब्बत मिले, प्यार मिले, अमन मिले, इस्लाम की दीन की तालीमात पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह बरकतें पाएंगे। तो मदनी चैनल का, हमारा बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, इसका प्रोग्राम आपने क्या देखा है, इसमें आज हमने कुछ बातें की हैं, यकीनन इससे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। आइंदा इंशाल्लाह किसी और शोबे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु
अलैहि قدر کرے قدر کرے قدر کرے